छदमणिज्यम्पवाई नमीऊणजिणम भणिमो दौवणियोगम गणीय सारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी गई थी और जिसके कर्ता हैं भगवान भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी और यह उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ तीसरी पुस्तक जो है संख्या प्ररूपणा वाली, उसमें पहले ही सूत्र में हमने देखा कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, तो अनंत है। तो यहाँ हम उसको संदृष्टि यानी अनंत की संख्या बताने के लिए पूर्ण जीव राशि को 16 कहा था, तो मिथ्या दृष्टि जीव उसमें से अनंत बहुभाग है यानी उसके लिए 13 संख्या लिखी, और बाकी बचे हुए यानी दूसरे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के 13 गुणस्थानवर्ती जीव और सिद्ध जीव सब मिलके उनकी संख्या 3 कही थी। तो इस तरह से ये संख्याओं में समझा रहे, परंतु 16 में हमेशा वो 16 यानी अनंत, 3 भी अनंत और 13 भी अनंत, फिर भी उसका जो प्रपोर्शन है वो अपने ख्याल में आना चाहिए। अभी हमने यहाँ गणित के अलग अलग सूत्र देखे हैं और भागाकार संबंधी और लब्ध संबंधी जो कुछ भागाकार में कुछ ऐड किया तो क्या होता है, तो लब्ध कम होता है, लब्ध में कुछ कम करना है तो क्या है, तो भागाकार बड़ा होता है, आदि हमने सूत्र देखे, कल विस्तार से देखे थे, 24 से लेकर कितने 31 थे कि 32 थे, लास्ट कौन सा 32 हमने देखा, 24 से लेकर 32 तक के हमने सूत्र देखे, उसका बहुत विस्तार से चर्चा भी की, गत 3-4 दिन से यही बात चल रही है अपनी। अब हम 52 पृष्ठ पर आ गए हैं, तो 52 पृष्ठ में देखते हैं हम, वहां कहते हैं विकल्प 2 प्रकार का है। अब यहाँ तो भागाकार और गुणकार आदि आदि में बताया, और जो जीव राशि है 16 उसका वर्ग करके उसको मिथ्या दृष्टि जीव से भाग दिया था, यानी जिसको हम 256/13 कहते हैं, जिसको ध्रुव राशि कही थी, उस ध्रुव राशि से अलग अलग संख्याओं को भाग देकर वो मिथ्या दृष्टि जीव राशि कैसे आती है उसको हमको देखना है। तो हमने देखा था 256/13 अपनी ध्रुव राशि है, तो उस राशि से 256 को डिवाइड करेंगे तो 13 आता है, परंतु क्या ऐसी कोई राशि है कि जो उसके नीचे की संख्या, जैसे 16 को भाग दो या 16 का वर्गमूल 4 को भाग दो, तो उसमें भाग ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये बड़ी राशि है, हमारी ध्रुव राशि बड़ी है, इसलिए हमने जो द्विरूप वर्गधारा देखी है, द्विरूप वर्गधारा का अर्थ क्या है, दो अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कौन सी धारा है वो दो की, तो दो का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग, इसको कहते हैं द्विरूप वर्गधारा। तो द्विरूप वर्गधारा में पहला ही स्थान 4 का है, दूसरा 16 का है, तीसरा 256 का है, चौथा 58 का है आदि, और हमारी ध्रुव राशि कितनी है 256/13। इस संख्या से 256 को तो डिवाइड कर सकते हैं, परंतु ये द्विरूप धारा की इसके नीचे वाली किसी फिगर को हम उसको उससे डिवाइड कर नहीं सकते, इसके आगे इसके वर्ग के वर्ग वर्ग आगे कहीं भी चले जाओ उसको तो डिवाइड कर सकते। तो यही बात यहाँ विकल्प से उनको क्या कहना है, अधस्तन विकल्प का अर्थ होता है इसके पहले वाली जो संख्या उसको अधस्तन कहते हैं, और ऊपरी तन यानी अब ये जो 16 है उसके आगे वाली जो फिगर है उसको हम ऊपरी तन कहते हैं। हाँ 256 के आगे या 16 से आगे भी कहेंगे हम, क्योंकि 16 के वर्ग वर्ग का वर्ग ऐसा कुछ भी फिगर आगे तक चली जाएगी, 4 अधस्तन में है। अब यहाँ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, देखो विकल्प 2 प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। उपरिम कहा उसको, उपरिम है आगे वाला और अधस्तन है उसके नीचे वाला, इन दोनों में से अधस्तन विकल्प को बतलाते हैं वह इस प्रकार है, कहते द्विरूप वर्ग धारा में यानी प्रकृत में, अभी तक हमने द्विरूप वर्ग धारा की बात की है, अन्य किसी धारा की बात नहीं की थी। तो द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि सभी उसके पहले वाले जो वर्ग है वो तो उससे कम संख्या वाले है। अभी हमने देखा था 256 से कम है सब, क्योंकि संपूर्ण जीव राशि से ध्रुव राशि का प्रमाण अधिक है। संपूर्ण जीव राशि हमने कितनी मान ली है, 16, और ध्रुव राशि कितनी है, 256/13, ये ध्रुव राशि है अपनी, यानी 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13 ये अपनी ध्रुव राशि है। तो संपूर्ण जीव राशि से उसका वर्ग डिवाइडेड बाय 13 संख्या अधिक है, इसलिए 16 के नीचे जो अधस्तन जो है उनके साथ ये ध्रुव राशि का भागहार संभव नहीं है। इसलिए द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प संभव नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अष्टरूप, जैसे द्विरूप वर्ग धारा वैसे अष्टरूप वर्ग धारा, यानी हमने 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 ऐसा देखा था, वैसे 8 का वर्ग 64 से प्रारंभ करेंगे इस वर्ग धारा में, तो 64 का वर्ग वो आगे वाला, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, उसका वर्ग। तो ये 8 क्या है, 2 का घन है। पहले हमने 2 के वर्ग की धारा देखी थी, अब 2 का क्यूब 8 है, और 8 का जो वर्ग 64 है वहां से अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी जैसे हम द्विरूप वर्ग धारा में पहला स्थान 4, दूसरा 16, तीसरा 256 देखते थे, अब उसका ये 2 की वर्ग धारा है ना, अब यहाँ 2 का घन करना 8, और 8 के वर्ग 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 करना, अभी 8 के घन नहीं करना, 8 के वर्ग वर्ग करते जाना, तो पहला स्थान आ जाएगा 64। हाँ, ये घन के वर्गों की धारा, घनों के वर्ग स्टार्टिंग, यानी किसके वर्ग कर रहे हैं हम, 2 के घन के वर्ग कर रहे हैं। तो इस धारा में क्या होगा कि यहाँ जो जो ऊपर संख्या है ना द्विरूप वर्ग धारा में, जो पहला स्थान है ये 64 क्या है, 64 = 4 का घन है। जैसे 8 2 का घन था, वैसे अभी द्विरूप वर्ग धारा का कोई भी स्थान ले लो, जैसे यहाँ पर चौथा स्थान हमको लेना है, तो द्विरूप वर्ग धारा में जो चौथा स्थान था पनट्टी, उसका घन यहाँ पर आ जाएगा। यानी द्विरूप वर्ग धारा में ये 64 का वर्ग 64 है, 64 का वर्ग नहीं, पहला स्थान देखो 64 है, 64 को हम कंपेयर टू यहाँ के 4 को कंपेयर करेंगे 64, तो 64 क्या है, 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64, यानी 4 का घन है, क्योंकि हमने 2 का घन यहाँ रखा, यहाँ 2 के वर्ग है और यहाँ 2 के घन के वर्ग है। तो ये जो जो वर्ग स्थान आएगा पहली धारा में, द्विरूप वर्ग धारा का जो स्थान है कोई भी ले लो, 16 है, 16 दूसरा स्थान है ना, तो द्विरूप घन धारा में दूसरे स्थान पर क्या होगा, 16 का घन होगा। पहले स्थान पर 4 का घन, दूसरे स्थान पर 16 का घन, तीसरे स्थान पर 256 का घन, चौथे स्थान पर पनट्टी का घन, ऐसे घन की धारा, घन के वर्गों की धारा चलेगी। यानी जो स्थान हमने यहाँ कोई भी देखा था, अभी मान लेते तीसरा स्थान 256 का है, उसका नीचे का स्थान हमको यहाँ निकालना है, तो ये क्या है, 64 का वर्ग यहाँ पर आ गए और वर्ग का वर्ग यहाँ पर आ जाए, परंतु हम ऊपर से देखते हैं तो क्या है, 256 का वो घन है, वही फिगर है जो 64 के वर्ग की वर्ग है, वही 256 की घन है। अभी आगे की फिगर छोड़ो, 16 की बात करेंगे,
कैसे हुआ, 4 का घन है,
64 ये 4 का घन है, हमारी फिगर कौन सी है, ये द्विरूप घन धारा है, पहले हमारी द्विरूप वर्ग धारा थी, अब यहाँ द्विरूप के घन की वर्ग धारा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है घन का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 8 × 64, यहाँ आठ का वर्ग है, परंतु अगर हम कंपेयर टू द्विरूप वर्ग धारा के साथ कंपेयर करते हैं तो इसी पोजीशन में ऊपर जो संख्या आती है उसका ये घन होता है। चार का घन है चार गुना चार गुना चार। अभी ऐसे 16 की बात करेंगे, यहाँ तो 64 का वर्ग आ जाएगा और वही 16 का घन होगा, यानी 4096 होगा। क्या लगता है ना, यहाँ जो लिखा है ऊपर द्विरूप वर्ग धारा में 4, 16, 256, 65, ये तो हम इसके मालूम है हमको, ये बहुत बार हमने देखा है। अब द्विरूप घन धारा में पहला स्थान कौन सा है, तो 64 का है। 64 को हम पहले लाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, वो 4 का घन होगा। अभी ये जो धारा चलेगी ये 64 का वर्ग है, यहाँ वर्ग का वर्ग है, यहाँ से देखना है हमको तो दूसरे स्थान से पहला स्थान वर्गमूल है। जैसे 16 ये वर्ग है, 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। यहाँ जो वर्ग है उसका ये वर्गमूल है। कोई भी संख्या ले लो, इस वर्ग धारा में किसी भी संख्या ले लो, उसके पहले का स्थान उसका वर्गमूल होगा। अभी यहाँ हमने देखा ये 16 का घन है या 4096 है या 64 का वर्ग है, कुछ भी कहो, अगर हम 16 के घन के भाषा में बोलना है तो 64 ये क्या है, देखो ये जो संख्या है ना यहाँ पर 4096 क्या है, 64 का वर्ग है, तो 64 ये 4096 का क्या हुआ, वर्गमूल हुआ, प्रथम वर्गमूल कहते हैं, क्योंकि पहले एक बार वर्गमूल किया ना उसको प्रथम वर्गमूल कहेंगे, वर्गमूल के वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल कहते हैं। अब यहाँ हम खाली प्रथम वर्गमूल की बात करेंगे, तो जो 64 है, 64 क्या है, द्विरूप घन धारा का प्रथम स्थान है, वो द्विरूप घन धारा के द्वितीय स्थान का क्या है, वर्गमूल है, प्रथम वर्गमूल है, बराबर। ये तो आसान है ना, यानी आठ वर्ग संख्या नहीं है, आठ हमारा वर्ग नहीं है, इस धारा में सभी वर्गों को लेना है। आठ का वर्ग 64 से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ चार क्या है, दो का वर्ग था और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वर्ग है वो, क्योंकि वर्ग शला का हमने की ना, वर्गों का स्थान। अब सभी जितनी धाराएं अभी देखेंगे हम, घन धारा और घना घन धारा, ये सब वर्गों के ही स्थान है, परंतु किसके वर्ग से हमने स्टार्ट किया है उसको वैसा नाम दिया है। इसको हमने द्विरूप वर्ग स्थान ऐसे कहा, द्विरूप वर्ग धारा, क्योंकि दो का वर्ग चार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, फिर चार का वर्ग चार, 16 का वर्ग ऐसे आगे आगे जाएंगे। द्विरूप घन आठ होता है और आठ का घन, आठ का वर्ग जो है वो 64 है, 64 हमारा फर्स्ट पहला स्थान है, किसका, द्विरूप घन धारा का। सेकंड पोजीशन में होगा 64 का वर्ग, यानी इस संख्या को 4096 को हमको देखना है तो द्विरूप घन धारा में वो दूसरा स्थान है ना, इसको हमको अलग अलग पद्धति से इसको देख सकते, ये 64 का वर्ग है ऐसा भी कह सकते हैं, या ऊपर से देखे तो 16 का घन है ऐसा भी कहेंगे, है ना। अब हमको 64 को देखना है, तो 64 ये क्या है, 4 का घन है, या यहाँ से बताना है तो हाँ 4096 का वर्गमूल है। अभी 4096 के हमने 16 का घन भी बताया था, एक ही संख्या को हम अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं, 4096 संख्या 16 का घन है, तो 64 को हमको बताना है तो क्या कहेंगे, 16 के घन का प्रथम वर्गमूल है। संख्या वही है, उसको हम अलग अलग भाषाओं में बता रहे हैं, प्रथम वर्गमूल, ख्याल है ना, ये संख्या लेना कि यहाँ जो ऊपर जो वर्ग है उसी का ये घन होगा यहाँ। अब आगे वाली एक धारा है वो घन का घन करना है, दो का घन आठ है और आठ का घन आता है 512। अब ये 512 का वर्ग से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हाँ, इसको घना घन धारा कहते हैं, द्विरूप द्विरूप दो का घन घना घन, आ सब घना घन घंटी बजने वाली
है।
वर्ग ही लेना, दो का घन कितना है 512 है। अभी हमारा घना घन धारा का पहला वर्ग कौन सा है, 512 का वर्ग, जो 262,000 और कुछ 144 ऐसा कुछ आता है, 262,144। पहले सुनो, हाँ ख्याल है ना, ये क्या होगा, ये यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट कौन से, द्विरूप घना घन धारा का पहला वर्ग स्थान होगा ये। अभी ऊपर से देखते हैं तो ये 64 का घन होगा, यहाँ से इसका घन है ना, जैसे ये 8 का घन 512 है, वैसे जो 262,144 है वो 64 का घन होगा, और हम 4 का क्या है, तो 4:9 होगा, 4:3 इज इक्वल टू 64, और 64:3 इज इक्वल टू 262,144। देखो ना, ये 512 है तो दो संख्या 9 बार लिखो और आपस में गुणा करो तो 512 आते हैं। क्योंकि 256 के लिए हम 8 बार गुणा करते हैं, और उसको 256 को और एक बार गुणा करो तो कितने आ गए, 9 बार गुणा किया ना, दो संख्या लिखना और 9 बार गुणा करो, यानी 2:9 अपनी भाषा में, 2 का घातांक 9 रखो तो संख्या कितनी आएगी, 512 यहाँ पर। अब जो जो वर्ग धारा, ये पहला वर्ग है तो द्विरूप वर्ग धारा का जो प्रथम स्थान है 4:9, यानी 4 को 9 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो ये 262,144 संख्या आएगी, यहाँ जो है द्विरूप घना घन धारा का प्रथम वर्ग स्थान। यहाँ लिखा है, देखो नीचे की जो घना घन धारा है उसमें क्या है, वो 4:9 है, उसी संख्या को हम 64 की भाषा में लिखना है तो 64:3 होगा, 64 का घन है वो,
मतलब 4 का घना घन हो गया ना,
4 का घना घन है। अब देखो, अभी हम इसको 16 की भाषा में लिखना है तो ये जो बीच में लिखा है ना हमने 16 के इस द्विरूप, और ये 16 का घन यहाँ था और यहाँ 16:9 हो जाएगा, और ये जो प्रथम स्थान जो है 2 लाख वगैरह 62,144 वो क्या होगा, ये 16:9 का प्रथम वर्गमूल हो जाएगा, 4 का डायरेक्ट 9 हो जाएगा, और स्क्वेयर रूट 16 का 9:9, 16 का घना घन का वर्गमूल, ये 16 की धारा देखो, 16 द्वितीय स्थान पर है, द्विरूप वर्ग धारा में 16 द्वितीय स्थान पर है, तो द्वितीय स्थान पर घना घन धारा में कौन है, घन धारा में 16 का घन होगा, और घना घन धारा में उसी दूसरे स्थान पर कौन होगा, 16:9 होगा, है ना। देखो अभी हमको पहला स्थान लेना है, दूसरा क्योंकि ये जीव राशि की हम कंसर्न है इसलिए हमने 16 की भाषा में लिखा, तो दूसरा स्थान है 16:9, तो पहला स्थान क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल 16:9। हमने 16 की भाषा में उसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये जो आगे आने वाली जो संख्या है वो 16 की भाषा में कहेंगे, जीव राशि के प्रथम वर्गमूल का या वर्गों का या ऐसी बातें करेंगे वो, क्योंकि हमके अभी लास्ट में कहाँ पर आना है, मिथ्यादृष्टि जीवों की संख्या निकालनी क्या लाते है ना, तो ये इन अलग अलग फिगर के साथ उसका क्या संबंध है इतना ही बताने वाले। तो द्विरूप वर्ग धारा में हमने देखा कि 16 से नीचे वाली फिगर के साथ ध्रुव राशि का भाग नहीं जाता है, इसलिए द्विरूप वर्ग धारा में तो अधस्तन विकल्प नहीं है, परंतु अभी ये जो हमने यहाँ लिखे अलग आगे वाली धारा ये जो लिखेंगे हम यहाँ, 64 और 16 का ऐसा हम यहाँ लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग. अभी पढ़ेंगे तो आगे ख्याल में आएगा. देखो 52 पृष्ठ पर यहाँ कहते हैं, वो पहला ही बड़ा पैराग्राफ, द्विरूप वर्गधारा में अधस्तन विकल्प संभव नहीं है. बराबर ना, अधस्तन, अधस्तन है ना, पहले, उसके पहले 16 से जो छोटी फिगर है उसको हम 256/13 से डिवाइड नहीं कर सकते. इसको कहते हैं अधस्तन विकल्प संभव नहीं है. हाँ देखो देखो, हमारी ध्रुव राशि कितनी है, 256 यानी 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13, ये हमारी ध्रुव राशि है. अभी हम इस ध्रुव राशि से अलग अलग संख्याओं को भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो कितने उसका प्रोपोर्शन बता रहे हैं. जैसे 16 का वर्ग 256 है, तो 16 के वर्ग 256 को अपनी ध्रुव राशि 256 डिवाइडेड बाय 13 से करते हैं, उसका डिवाइड करते हैं, तो संख्या क्या आती है, 256 चले जाते हैं, 13 ऊपर आ जाएगी, 13 अपनी संख्या आएगी. तो ऐसा जो भाग दिया हमने 256 को दिया था, वैसा भाग हम जीव राशि के जो अधस्तन वर्ग स्थान है 4 है या 16 इटसेल्फ है, उसको हम भाग नहीं दे सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटी संख्या है. इसलिए ध्रुव राशि से छोटी राशि, ध्रुव राशि से छोटी राशि या जीव राशि से छोटी राशि, द्विरूप वर्ग धारा में 4, 16, 256 है, तो द्विरूप वर्ग धारा में जीव राशि से जो छोटी राशि है, एक ही स्थान है 4 वाला, तो 4 संख्या बहुत छोटी है, तो उसको हम 256/13 का भाग नहीं दे सकते, 16 को भी नहीं दे सके हम, हमने तो उसके वर्ग के साथ भागाकार किया था, तो इसलिए अधस्तन विकल्प कोई संभव नहीं है. द्विरूप धारा में तो संभव नहीं है, तो अब हम घन धारा की ओर चलेंगे. आगे क्या लिखते पढ़ेंगे ना तो ख्याल आ जाएगा. देखो क्योंकि कारण बताया, संपूर्ण जीव राशि से ध्रुव राशि का प्रमाण अधिक है. संपूर्ण जीव राशि हमने कितनी मानी है, 16, और ध्रुव राशि कितनी है, 256/13. वहां आप नोट करना पेंसिल से, ध्रुव राशि हमारी 256/13 यानी 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13, या 256 लिखो कोई बात नहीं. अब अष्टरूप अर्थात घन धारा में अधस्तन विकल्प बतलाते हैं. अष्टरूप धारा कहो या द्विरूप घन धारा कहो, एक ही बात है, तो उसमें तो पॉसिबल है ना उसका वर्ग, क्योंकि यहाँ 16 का घन आता है इसमें, तो उसमें तो जो जीव राशि का जो वर्ग स्थान दूसरा है उसके साथ उसका भागाकार हो सकेगा, तो उसको अभी बतलाते, उसको कहते हैं अधस्तन विकल्प घन धारा में बतलाते. ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणित करके, ध्रुव राशि हमारी 16 का वर्ग है डिवाइडेड बाय 13. अभी हम 16 के वर्गों में ही बात करेंगे, 256 में नहीं करेंगे, आसान पड़ता है इसलिए. तो ध्रुव राशि से किसको गुणा करना, संपूर्ण जीव राशि यानी 16 को गुणा करना. तो संपूर्ण जीव राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका, अभी इसका भाग देना है, किसमें देना, तो इससे डिवाइड किसको करना है, संपूर्ण जीव राशि के घन में भाग देना. किसमें भाग देना है, संपूर्ण जीव राशि का घन, 16 के घन डिवाइडेड बाय, अभी 16 का वर्ग गुणा 16 कितना हो जाएगा, 16 का घन ही आएगा ना इसमें, और 16 घन क्रॉस हो जाएगी यानी अपवर्तन होगा उसका, और रहेंगे 13. तो ये इतना आसान है, अभी ऐसे हर एक के साथ ऐसे ही करेंगे, जहाँ फुल उसका भाग दे सकते हैं उसको ये ना अधस्तन विकल्प का क्या कहा. अभी ये 16 जीव राशि, 16 का घन द्विरूप वर्ग धारा में ना, ये ध्रुव राशि से, तो इसको क्या, इसको भाग देना है. यहाँ दूसरे स्थान पर 16 है, अभी इससे छोटी फिगर तो भाग नहीं दे सकते, तो 16 के नीचे वाला जो घन धारा में जो 16 का घन आता है उसको डिवाइड करना है, किससे, ध्रुव राशि मल्टीप्लाइड बाय जीव राशि, यानी 16 का वर्ग मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 13, इस संख्या से 16 के घन को डिवाइड करो, 13 आने वाली है संख्या। अभी इसमें कुछ ये उलझन नहीं है, अभी वो सूत्र जो थे ना उसमें बहुत गड़बड़ी थी, ये तो सिंपल है। क्या कहना चाहते हैं, इतने हमको कहाँ की बात कर रहे हैं, इतना हमको ख्याल में लेना है। देखो हम आगे पढ़ते हैं। भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है, क्योंकि 13 है ना, क्योंकि यदि संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से संपूर्ण जीव राशि का घन अपहृत किया जाता है, अपहृत यानी भाजित, क्या कहते हैं, हमने ऐसे पहले हमारा ऐसा गणित है ना, 16 का घन डिवाइडेड बाय 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो उन्होंने एक एक को अपहृत किया, 16 से 16 के घन को डिवाइड करते हैं तो 16 का वर्ग ऊपर रह गया, बराबर, तो 16 का वर्ग रह जाता है, तो संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग का प्रमाण आता है। और फिर ध्रुव राशि के प्रमाण का संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है, यही बात है उन्होंने दो स्टेप में बतलाई। हमने इसको यहाँ घन कर दिया और घन के साथ घन को मिटा दिया, और यहाँ क्या कहते हैं, पहले जो 16 है यहाँ अलग, वो 16 से घन को भाग दिया तो 16 का वर्ग ऊपर रह गया और नीचे 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13, तो भागहार का भागहार 13 है, वो ऊपर चला जाएगा और 13 संख्या रहेगी। अब आगे, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि राशि आती है, वो राशि हुआ है, राशि करना उसको, इस बात को मन में निश्चित करके पहले गुणा करके अनंतर भाग का ग्रहण किया है, यानी पहले इसको गुणा किया और बाद में फिर उस संख्या से घन को भाग दिया। यही उदाहरण यहाँ लिखे हैं नीचे, जीव राशि 16 है, ध्रुव राशि है ये 256 डिवाइडेड बाय 13, उसको उन्होंने पूर्णांक अपूर्णांक में लिख दिया, 19.9 डिवाइडेड बाय 13। अभी उसको जीव राशि को ध्रुव राशि से गुणा किया तो 4096 डिवाइडेड बाय 13 आया, यानी यही है 16 का घन डिवाइडेड बाय 13। अब जीव राशि 16 का घन कितना है, वो 4096 है, तो 4096 डिवाइडेड बाय 4096 डिवाइडेड बाय 13, तो 4096 निकल जाता है एक दूसरे के साथ, और फिर 13 रह जाती है जो मिथ्या दृष्टि जीव राशि। अब यहाँ पर द्विगुणाधिकरण विधि को बतलाते हैं, नए नए नाम आने से घबराना मत, दो गुणा करना है हमको, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या कहते हैं, संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से संपूर्ण जीव राशि के घन के अपवर्तित करने पर संपूर्ण जीव राशि के उपरी वर्ग का प्रमाण आता है। अपनी भाषा में क का घन डिवाइडेड बाय क क्या आएगा, क वर्ग आता है, यही कहते हैं 16 के घन को संपूर्ण जीव राशि यानी 16 से हम डिवाइड करते हैं तो 16 का वर्ग आएगा, बराबर, जीव राशि का ऊपरी वर्ग यानी 16 का वर्ग। जीव राशि है तो अनंत, परंतु यह हमको 16 में समझा रहे हैं, ये तो सिंपल बिल्कुल है, नहीं समझे तो पूछ लेना। अभी आगे, अतः द्विगुणित संपूर्ण जीव राशि से, अब ये कितना सिंपल है देखो, पहले हमने क्या अभी यहाँ लिखा, 16 के घन से घन को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 का वर्ग आएगा। अभी द्विगुणित करना 16 को और 16 के घन को डिवाइड करना, अभी अपनी सिंपल भाषा में 16 का घन 4096 था, उसको 16 से हमने डिवाइड किया था तो 256 आई थी संख्या, जब हमने 16 से डिवाइड किया तो 256 आई थी। अब हम 16 के डबल करके 32 से डिवाइड किया तो कितनी संख्या आएगी? हाँ, 128 की आधी हो जाएगी ना। तो यहाँ हम 16 के बदले 16 को द्विगुणित किया, दो गुणा किया और उससे डिवाइड किया, यानी जो पहले उत्तर आया था उसका आधा कर दो, क्योंकि हमने इस भागाकार में दो से भाग दिया है तो वहाँ भी भागाकार में जाएगी तो दो नीचे ही आएगी संख्या, है ना। तो 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ डिफिकल्ट है क्या? समझ में आता है तेजुबेन? ये पता चलता है कि नहीं चलता? देखो, 16 के घन को 16 से डिवाइड किया तो 16 का वर्ग आया। अभी उसी संख्या में हम दो से डिवाइड करते हैं तो 16 के वर्ग का आधा हो जाएगा। अब मान लेते यहाँ 3 से गुणा करेंगे 16 को तो इसका तीसरा भाग आएगा। इसको कहते हैं द्विगुणाधिकरण। द्विगुणित किया, 3 गुणा किया, 4 गुणा किया, असंख्यात गुणा किया, जो कुछ है होगा, तो यहाँ जो संख्या आने वाली है उसका भी उतना हिस्सा करना पड़ेगा। समझ में आता है ना ये बात? देखो, तीसरी लाइन, द्विगुणित संपूर्ण जीव राशि। द्विगुणित संपूर्ण जीव राशि यानी 16 गुणा 2, तो द्विगुणित संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से संपूर्ण जीव राशि के घन के अपवर्तित करने पर, यानी घन को डिवाइड करने पर, अपनी सिंपल भाषा में बोलेंगे हम, बम्बई या हिंदी, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग का दूसरा भाग आता है। हमने 16 का घन डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 16 का वर्ग देखा था। अब यहाँ भागाकार में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ भी उसका आधा हिस्सा हो जाएगा, यानी 16 वर्ग डिवाइडेड बाय 2 यानी 256 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 128 अपनी कीमत आ जाएगी। ये तो हो गया, इतना ही है, वो द्विगुणित करने नहीं, इतना ही है। अब आगे यहाँ लिखा है द्विगुणित पन चाहिए त्रिगुणित, उसको त्रि करना, द्वि के बदले त्रि करो उसको। हाँ, नीचे से तीसरी लाइन। हाँ, और इसके लिए रेफरेंस ऊपर प्राकृत में देखना, अंतिम लाइन में देखो, दुभागो आगच्छति के आगे त्रिगुणित है ना, त्रिगुणित सौव जीव राशिना, यानी जैसे अभी 2 गुणा करके बताया है वैसे 3 गुणा करके यहाँ समझा रहे हैं। तो त्रिगुणित संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से, यानी अभी 16 को 3 गुणा करना और उससे 16 के घन को डिवाइड करना, सिंपल है ना। देखो, 16 के घन को हम खाली 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 का वर्ग आता है। अब इसका तीसरा हिस्सा करो तो जो उत्तर आया था उसका भी तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा। ये तो इतना सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें। जो उत्तर आया उसका आधा करना या उसका तीसरा हिस्सा करा, चौथा हिस्सा करो, जो कुछ है। जितना यहाँ 16 को मल्टीप्लिकेशन में छेद में लेते हैं वैसे यहाँ भी छेद में ही लिया हमने। पहले डायरेक्ट हम वर्ग को उसकी संख्या से डिवाइड करते थे घन को तो वर्ग आता था, अभी यहाँ नीचे 16 को मल्टीप्लिकेशन में 2 लिया या 3 लिया या 4 लिया तो यहाँ भी डिवीजन में लेना पड़ेगा 2, 3 या 4। इसको फिर पढ़ती हूँ। त्रिगुणित संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से संपूर्ण जीव राशि के घन को अपवर्तित करने पर, अपवर्तित यानी डिवाइड करने पर, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के प्रमाण का तीसरा भाग आता है, यानी 16 के वर्ग का डिवाइडेड बाय 3 तीसरा भाग। यहाँ लिखा है 4096 डिवाइडेड बाय 48, कहाँ से आए? 16 गुना 3 है? तो संख्या जो आई हो वो तो 256 को तीसरा भाग करके जो संख्या आती है वो आ गई। वहाँ अपनी भाषा में लिखेंगे ना, 16 का वर्ग डिवाइडेड बाय 3, वही यानी 256 डिवाइडेड बाय 3। अभी इन्होंने पूर्णांक अपूर्णांक में लिखा है, 85 पूर्णांक 1/3। इस प्रकार इसी विधि से जब तक ध्रुव राशि का प्रमाण 19 पूर्णांक 1/3 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक गुणकार को बढ़ाते जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अब इस तीन के बदले यहाँ चार करेंगे, फिर पांच करेंगे, दस करेंगे, बारह करेंगे, कहाँ तक करना है? तो मल्टीप्लिकेशन में 19 पूर्णांक एक तृतीयांश, तो घन को 16 मल्टीप्लाइड बाय 19 पूर्णांक एक तृतीयांश क्या है अपना? ध्रुव राशि में तो 13 है ना, नहीं नहीं ये बराबर है, एक एक मिनट, 9-13 अंश, ध्रुव राशि 9/3, 9/13 है, पर ये ध्रुव राशि को नहीं बताना चाहते, ये 1/3 ही वो बताना, ध्रुव राशि का प्रमाण, ओ एक मिनट, ध्रुव राशि का प्रमाण बताया उन्होंने, हाँ 19 पूर्णांक 9-13 अंश ऊपर जो लिखा है उदाहरण में, हाँ हाँ करेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 256/13 आना चाहिए था ना वहाँ, और इन्होंने ध्रुव राशि ऊपर दिए उदाहरण के इसमें 19 पूर्णांक 9-13 अंश, 13 अंश चाहिए, वो डिवाइडेड बाय 3 लिखा है ना उसमें, 9-13 अंश चाहिए, देखो हम यहाँ समझने के लिए 256/13 लिखते हैं, इसको हमने 2 गुना किया तो यहाँ भी उसका दूसरा भी भाग करना पड़ेगा, 3 गुना किया इसका तीसरा भाग, 10 गुना किया इसको 10वां भाग, यानी अब हमने इतने गुना किया तो यहाँ भी वही संख्या लिखनी पड़ेगी, ये भी 256 ही है 16 का वर्ग, तो हम उसी पॉइंट पर आ गए, 256/256/13, हाँ यहाँ घन है, यहाँ 16 है, अपकर्षण नहीं कहते इसको, हाँ देखो क घन डिवाइडेड बाय क क्या आया, क स्क्वायर, इतना सिंपल है वो, अभी क मल्टीप्लाइड बाय ध्रुव राशि, क्या करना पड़ेगा, क वर्ग बाय ध्रुव राशि, क वर्ग इज इक्वल टू 256 और ध्रुव राशि इज इक्वल टू 256/13, ये तो आसान है, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है लास्ट लाइन में ध्रुव राशि का प्रमाण 19 पूर्णांक 9-13 अंश है और 3 के 13 करना, 3 के 13 और 1 के 9, अभी घनधारा में देखा हमने, अभी हमने घनधारा में देखा है, अभी घनधारा में बताए ना आपको, ये घन को हमने भाग दिया है, घना घन की अभी बात नहीं की उन्होंने, ये घनाघन मैंने क्या धारा होती है वो समझाया है, जब वो बताएंगे तब हम पढ़ेंगे उसमें से, तो अभी हम आए हैं 53 पृष्ठ पर, पुनः ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणित करने पर जो लब्ध आवे उससे संपूर्ण जीव राशि के घन के अपवर्तित करने पर, यानी घन को डिवाइड करने पर संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में ध्रुव राशि का भाग देने पर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण भाग आता है और वही मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण है। अभी हमने देखा था ना, क वर्ग डिवाइडेड बाय ध्रुव राशि आई और ध्रुव राशि हमारी क्या है, क वर्ग डिवाइडेड बाय 13। क वर्ग चला गया, अपवर्तन हुआ और 13 ऊपर आ जाएगा तो अपना 13 जो है मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण वो आ गया। इसी कारण से यह कहा है कि ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे उससे संपूर्ण जीव राशि के घन के अपवर्तित करने पर यानी घन को भाजित करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। ये अभी हमने जो देखा वह उसका उदाहरण उन्होंने देखिए दिया है, 16 × 256 / 13 = 4096 / 13। अब ये जो 4096 / 1 है ये क्या है, जीव राशि का घन है, डिवाइडेड बाय 4096 / 13 तो वो आता है 13, उसकी संख्या आ जाती है। अब घनाघन में अधस्तन विकल्प को बताते हैं। हमने देखा था यहाँ जीव राशि 16 है तो 16 का घन यहाँ पर आता है और घनाघन में उसका रेस्ट 9 आ जाते हैं। तो घनधारा में डायरेक्ट हमने जीव राशि का घन लिया था, है ना। अब आगे यहाँ क्या बताते हैं, तो घनाघन में अधस्तन विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणित करके जो गुणफल आवे उससे जीव राशि के घन के प्रथम वर्गमूल को गुणित करके जो गुणनफल आवे उसके द्वारा क्या कहते हैं। पहले में पहले क्या करना है, 16 वर्ग / 13 को मल्टीप्लाई करना और इससे और किसको मल्टीप्लाई करना, देखो इससे जीव राशि के घन का प्रथम वर्गमूल, जीव राशि का घन कितना है 16, 16 के घन का प्रथम वर्गमूल कितना है देखो, उसमें देखो वहां देखो 16 का घन यहाँ 4096 यहाँ पर है और 4096 का वर्गमूल कितना है 64 है ना, हाँ 64 बताया आपने। तो वहाँ हमने देखा ना वर्गमूल 16 घन लिखा है हमने, तीनों फिगर एक ही है, 4 का घन कहो 64 कहो या 16 के घन का वर्गमूल कहो एक ही बात है। तो यहाँ हम 64 भी लिखे तो चलेगा, यानी 16 × 4 हो जाएगी, बराबर है ना। अभी हम ऐसा ही लिखते हैं फॉर द टाइम बी। अभी ये जो संख्या आ गई है यहाँ जो देखो, ये संख्या समझ में आई, इससे अभी किसको डिवाइड करना है वो देखेंगे। जो गुणनफल आवे, ये गुणनफल आया कौन सा, 16 × ध्रुव राशि × 16 के घन का प्रथम वर्गमूल, बराबर। इससे क्या करना है, घनाघन के प्रथम वर्गमूल को ऊर्ध्वाधर करने पर, अभी 16 का घनाघन कितना है 16:9 और उसका वर्गमूल कितना है, 16 का घनाघन उसका वर्गमूल अपनी भाषा में कहो तो 512 का वर्ग जो है 262,144, ख्याल है ना। अभी तो हमने ये वर्गमूलों में इसको रखा है, अभी इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, वो भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्या कहते हैं, इसको उद्वर्तित करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। उद्वर्तित करना है, ये उसको सॉल्व करना है, उसको भाग देना, भाग देने पर प्रथम वर्ग, हाँ उसको भाग देना, उल्टा करके गुणित करके ना, वो देखो इसको फिर पढ़ते। ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव, ध्रुव राशि कौन सी है, 256 डिवाइडेड बाय 13, ये जो घना घन का अधस्तन विकल्प है ना नीचे का पैराग्राफ, वो फिर मैं पढ़ रही हूँ पहले लाइन से ही। ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणित करके, ये संपूर्ण जीव राशि 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 वर्ग डिवाइडेड बाय 13, ये ध्रुव राशि हुई। जो गुणनफल आवे, ये जो संख्या आएगी उससे जीव राशि के घन के प्रथम वर्गमूल को गुणित करना। जीव राशि का घन यानी 16 घन, और उसका प्रथम वर्गमूल कहो तो 64 आता है, उसको गुणित करके जो गुणनफल आवे, ये जो पूरी संख्या है उससे क्या करना, अभी घनाघन के प्रथम वर्गमूल को उद्वर्तित करना यानी भाग देना। घनाघन, हाँ 64 का घन हो गया है। अभी देखो यहाँ 16 के घन का प्रथम वर्गमूल है, यहाँ हम 64 लिखेंगे बराबर, और यहाँ 64 का घन लिखेंगे। बराबर है ना? हाँ। अब ये करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये 16 का वर्ग है और ये 16 का घन हो गया और ये पहले में पहले ये 64 और यहाँ 64 का वर्ग रह गया। 64 का वर्ग कहो या क्या है, 64 का वर्ग कहो या 16 का घन कहो, एक ही बात है। यहाँ लिखा है देखो पहले में, 64 का वर्ग कहो या 16 का घन कहो। अभी 64 के वर्ग के बदले में हम यहाँ 16 का घन लिखेंगे, तो ये 16 का घन लिख दिया, और नीचे भी 16 वर्ग गुना 16, 16 का घन हो गया, तो ये भी गया, तो 13 रह गया। ये 13 हमेशा रहने वाला है नीचे। ऐसे अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं ध्रुव राशि से। द्विरूप वर्ग धारा में बाकी राशि छोटी थी इसलिए उसको डिवाइड नहीं कर सके, तो हमने घन धारा में भी डिवाइड करके अभी देखा और घना घन धारा के साथ भी उसका संबंध बताया। अब आगे पढ़ते हैं। इसका एक कारण बता रहे हैं हम, अभी चौथे लाइन में आए हैं, क्योंकि घन के प्रथम वर्ग मूल से यानी 64 से जीव राशि का घन का प्रथम वर्गमूल, आप बोर्ड पर दे सकते हैं, जीव राशि का घन है 16 का, जीव राशि का घन 16 का घन 4096, और उसका प्रथम वर्गमूल कितना है 64 से, यानी 64 से घनाघन के प्रथम वर्गमूल को यानी 64 के घन को, बराबर है ना, घनाघन का प्रथम वर्गमूल, घनाघन है 16:9 घनाघन धारा में देखो, और उसके प्रथम वर्गमूल यानी उसके पहले वाला स्थान 64 का घन है वो, यानी 64 के घन को 64 से डिवाइड किया, उद्वर्तित करने पर यानी भाग देने पर कितना आया, 64 का वर्ग कहो या 16 को घन कहो वह आया, तो संपूर्ण जीव राशि का घन आता है। ये ख्याल आया इस वाक्य, क्योंकि के आगे हमने क्या देखा, घन के प्रथम वर्गमूल से यानी 64 से घनाघन के प्रथम वर्गमूल को यानी 64 के घन को उद्वर्तित किया यानी उसको डिवाइड किया, तो क्या आया, संपूर्ण जीव राशि का घन आया, यानी 64 का वर्ग आया कहो या 16 का घन आया कहो, एक ही बात है। अनंतर यानी उसके बाद संपूर्ण जीव राशि से संपूर्ण जीव राशि के घन के अपवर्तित करने पर यानी जीव राशि के घन को जीव राशि से डिवाइड करने पर संपूर्ण जीव राशि का उपरी वर्ग आता है, ये ऊपरी उम्र का बचा भी ऊपर। अनंतर ध्रुव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण आता है। उन्होंने एक बाय एक एक सेट किया कि 256 डिवाइडेड बाय 256 बाय 13, तो 13 उत्तर आ गया। अनंतर ये हो गया ना, जीव राशि का प्रमाण आता है। घनाघन धारा में इस प्रकार जीव राशि का प्रमाण आता है ऐसा समझकर पहले गुणा करके अनंतर भाग का ग्रहण किया है। यहाँ पर द्विगुणाधिकरण के कर लेने पर अधस्तन विकल्प समाप्त हो जाता है। जैसे हमने वहाँ 16 को 2 गुणा किया, 3 गुणा किया, 4 गुणा किया, ऐसे यहाँ पर जो कुछ पॉसिबल है वो कर लेना, ध्रुवहार से गुणा कर इस तरह से। उदाहरण देते हैं, जो अभी हमने देखा उसी को फिर लिख रहे। 16 के घन का प्रथम वर्गमूल 64, ये कैसे आया खबर पड़ी ना। 16 का घन कितना है, 4096। उसका प्रथम वर्गमूल कैसा कि हमने घना घन धारा का पहला स्थान लिया, उसके पहले वाला स्थान। तो जो 16 का घन है वही 64 का वर्ग है, इसलिए 64 कहने के बदले जीव राशि के घन का प्रथम वर्गमूल कहा। ये लंबी चौड़ी भाषा है इसलिए घबराना मत, 64 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे, 16 के घन का प्रथम वर्गमूल 64 और घना घन का प्रथम वर्गमूल 262,144। वो क्या है, 2 के घन का घन जो 512 है उसका वर्ग है, और 16^9 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। अब यहाँ इन्होंने लिखे है, ये पहले में पहले ध्रुव राशि लिखी 19.9913 मल्टीप्लाइड बाय 16 × 64, 16 के घन का वर्गमूल इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके उन्होंने दिखाया है, ये 262,144 डिवाइडेड बाय 13 आते हैं। और ये जो 262,144 है उसको उसी संख्या डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड किया तो 13 आ गया। अब उपरिम विकल्प, ये तो नीचे के कौन कौन के स्थानों के साथ उसके डिवीजन हो सकते हैं उसको बताया। अब उपरिम विकल्प ने ऊपर के वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करो, एक बार के वर्ग का वर्ग करो, या दो बार वर्ग का वर्ग करो, या असंख्यात बार करो, या अनंत बार करो, उस सबके साथ इसका संबंध बताएंगे। ऐसे उतने बार हम कह रहे नहीं है, जितना हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उतना ही गुणा करेंगे, वही हमेशा 13 ही आने वाला है। अभी हमें उसका फॉर्मूला ख्याल में आ गया कि जो जिस संख्या से वो डिवाइड करते हैं ऊपर, नीचे भी उसके भाग देने वाली जो संख्या तैयार होगी वो उसको नीचे बताएंगे। ये अलग अलग संख्याओं के साथ इसका संबंध बता रहे, इतनी बात है। ऊपरी विकल्प 3 प्रकार का है, गृहित, गृहित गृहित और गृहित गणकार। उनमें से पहले गृहित ऊपरी विकल्प को दिखलाते हैं। अब शंका, ध्रुव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर कौन सी राशि आती है, ऊपरी विकल्प हुआ। ध्रुव राशि का वर्ग लिया ना पहला ही, वो तो हमेशा हमने ध्रुव राशि उसी से निकाली थी, तो 256 को 256 बाय 13 से भाग देने पर 13 ही आता है, तो समाधान मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। ये तो हमने बहुत बार पहले देखा था, इसको ऊपरी विकल्प कहते क्योंकि वो जीव राशि का वर्ग है ना, इसलिए। अब कहते हैं, ध्रुव राशि प्रमाण भागहार के जितने अर्धच्छेद हो उतनी बार जीव राशि के ऊपरी वर्ग रूप राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि ही आ जाती है। हमने अभी क्या देखा था, 256 डिवाइडेड बाय 256 बाय 13, ऐसी अपनी संख्या है ना। अब कहते हैं इसके अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय इसके अर्धच्छेद भी उतनी ही संख्या आ जाएगी, कैसे, इसको आधा आधा करके हम गुणा करेंगे तो 2 × 2 तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में ये गुणा कर ले, लगा देना, दो संख्या 8 बार गुणा करेंगे तो 256 आते हैं, और नीचे की संख्या कौन सी है, 256/13। तो यहाँ भी 8 बार 2-2 लिखेंगे और अंत में 1/13 लिखेंगे, वही है ना। अब ये 8 बार जो है, 2-2 संख्या 8 बार के 2-2 के साथ कैंसिल कर दो, 13 आने वाला है। तो उसके अर्धच्छेदों को इसके अर्धच्छेदों से डिवाइड करो तो भी 13 ही आएंगे। हमें खाली इसका अर्थ ख्याल में लेना है, अलग अलग पद्धति से जो हमें समझाया है उन शब्दों के अर्थ हमें भाषित होते हैं कि नहीं इसको देखना है। अब उदाहरण, ध्रुव राशि 19.913 है, इसमें से 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं और शेष 3.913 के चौथे अर्धच्छेद पर 3/13 अधिक रहता है। इसलिए 19.913 के 3/13 अधिक 4 अर्धच्छेद हुए हैं, अतएव जीव राशि 16 के वर्ग 256 के इतने बार अर्थात 4 + 3/13 बार अर्धच्छेद करने पर 13 आ जाते हैं। ये क्या कहना चाहते, देखो देखो, ध्रुव राशि 256/13 है और उसमें से जीव राशि के अर्धच्छेद कितने हैं, 4 है। 16 के अर्धच्छेद कितने हैं, 4 है। तो 4 जिसके अर्धच्छेद हुए उतनी बार इसके अर्धच्छेद करते जाओ, उतनी बार करो। तो एक बार किया 128/13 है, दो बार किया 64/13 आ गए, तीन बार किया 32/13 आ गए, चार बार किया 16/13 आ गए। तो 16/13 का ही अर्थ क्या है, 3/13 अधिक रहेगी ना उसके, एक पूर्णांक 3/13 रहेगी। देखो क्या कहते हैं, इनमें से 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं, उन्होंने ऐसा निकाला, 19 पूर्णांक है ना, 19 पूर्णांक कितने हैं, 9/13, उसमें से 16 के अर्धच्छेद कितने हैं, 4 है, वो अलग निकाला। अभी बचे कितने हैं, 3.913, 33, 39 और 9, 48/13। तो अभी उसके अर्धच्छेद करते जाओ, चौथा अर्धच्छेद करना, पहला अर्धच्छेद किया 24 आए, दूसरा किया 12 आए, तीसरा किया 6 आए, चौथा किया 3 आए और ये 13 है, तो 3/13 रह गए। तो ये 3/13 रह गए, इसलिए क्या कहते वो तीसरी लाइन, अतएव जीव राशि 16 के वर्ग 256 के इतनी बार यानी 4 + 3/13 बार अर्धच्छेद करने पर 13 आ जाते हैं। देखो ये 19.913 है, यानी उसको पूर्णांक में किया, 256/13 अपनी ध्रुव राशि है ना, तो इसको हमने ऐसा पूर्णांक में लिख दिया, 13 × 13 कितने रह गए, 12 रहेगी ना, और 12 और ऊपर आया 6, 126, तो 93, 17 उधर से बाकी रहेगी 9, 9/13 ये संख्या है। अब इसमें से 16 फुल फिगर है, उसके अर्धच्छेद 4 आते हैं और उसके आगे 48/13 रह गए, 3.913 रह गए ना। ये जो 19 में से 16 निकाल दिए तो कितने रह गए, 3.913 रह गए। उसका हमने फिर सिंपलीफाई किया अपने लिए, उन्होंने इधर डायरेक्ट लिख दिए 4 अर्धच्छेद, तो 48 डिवाइडेड बाय 13 आ गए। इसका अर्धच्छेद करते जाएंगे हम, तो जो अंश में उसको आधा आधा करते जाना है, तो 48 का आधा हो गया 24, यानी 24 डिवाइडेड बाय 13 वो रख देना हम हमेशा उसके साथ। डिवीजन में हमने लिखा नहीं, मगर वो 13 डिवीजन में लिखते जाना, उसका आधा करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 13, उसका आधा 6 डिवाइडेड बाय 13, उसका आधा 3 डिवाइडेड बाय 13, अब ये रह गया इतना। अभी ये जो 4 पूरे 4 और 3 13 है ना, अभी ये कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं कि 256 के इतने बार अर्धच्छेद करना, 16 का वर्ग जो 256 है उसके भी इतने बार अर्धच्छेद करते जाना, तो उसका हाँ आठ बार डिवाइडेड बाय 13 हो जाते ना, पहले 16 के 4 बार निकाले थे, देखो उन्होंने समाधान में क्या लिखा था उसको पहले पढ़ेंगे। समाधान मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती उसके नीचे की लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन में मिला ध्रुव राशि प्रमाण भागहार के जितने अर्धच्छेद हो, यानी 256 डिवाइडेड बाय 13 के जितने अर्धच्छेद हो उतनी बार लिखा है ना, जीव राशि के ऊपरी वर्ग रूप राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि ही आ जाती है। हमारे 256 डिवाइडेड बाय 13 थे ना, इसके पहले 4 अर्धच्छेद होते हैं ना, उसके बाद ये पूरे अर्धच्छेद 8 + 3 13 अंश हो गए। पहले 16 के कर दिए थे, बचे थे उसके किए थे ना हमने 19.313 में, कितना थे 3 13 अंश था ना, 3.913। देखो अर्थात 4 नहीं, वो 8 + 3 13 अंश चाहिए ना, ऐसा कुछ चाहिए। देखो 19 में से 16 हमने बाहर बाजू निकाले, 16 के 4 थे और रिमेनिंग के 4 + 3 13 अंश इतने थे, यहाँ पर 3 13 अंश बराबर है।
अपन ने किया था ना 16 को 4 बार,
ये इसके इसके चार प्लस तीन तेरह अंश है और सोलह के उतने थे पहले ही, सोलह के थे ना, सोलह के ऑलरेडी उतने थे, चार थे और ये और चार और तीन तेरह अंश हो गए। देखो देखो ऊपर शंका समाधान किया आगे हम पढ़ेंगे उसको। देखो देखो नीचे समझाए उन्होंने, नीचे शंका समाधान किया, देखते हैं क्या कहते हैं। भागार राशि के अर्धच्छेद प्रमाण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के अर्धच्छेद करने पर मिथ्या दृष्टि राशि किस कारण से आती है ना, यानी भागार के अर्धच्छेद जितने किए उतने ही अर्धच्छेद ऊपर के राशि से किए। हाँ भागार और यानी ऊपर भी उतने ही अर्धच्छेद किए और नीचे भी उतने ही किए, तो मिथ्या दृष्टि राशि कैसे आ सकती है? हमने पहले ही बताया था 256 के ऊपर आठ बार दो बार से दो दो से गुणा किया और नीचे अर्धच्छेद भी आठ बार किया और लास्ट में एक तेरह अंश था। हाँ, तो अभी इसको ये लंबा लंबा समझा रहे, अभी यहाँ देखते क्या समझाते। चूंकि ध्रुव राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं संपूर्ण जीव राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं के बराबर होती है, यदि ऐसा ग्रहण कर लिया जाता है तो, यदि हम ऐसा मान लेवे कि ध्रुव राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं संपूर्ण जीव राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं के बराबर होती है, तो क्या होगा? ध्रुव राशि को अर्धार्ध रूप से छिन्न करके शेष रही हुई राशि का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि को मिथ्या दृष्टि राशि से खंडित करने पर जो लब्ध आता है उतना आता है। क्या कहना चाहते हैं? ध्रुव राशि की अर्धच्छेद शलाकाएं, ध्रुव राशि हमारी 256 बाय 13 है, संपूर्ण जीव राशि की अर्धच्छेद शलाकाओं के बराबर होती है ऐसा अगर माना जाए, यानी इसके अर्धच्छेद चार शलाका इतनी होती है ऐसा अगर माना जाए तो क्या संख्या आ जाएगी? यानी इसको चार बार खंडित करना है आधा आधा, एक बार किया तो 128 बाय 13 है, दो बार 64 बाय 13 है, तीन बार 32 बाय 13 है और चार बार किया तो 16 बाय 13 आ गए, बराबर। तो क्या आया, कितना लब्ध आता है? 16 बाय 13 यानी एक पूर्णांक तीन चतुर्थ तीन तेरह अंश इस प्रकार आता है। इसलिए संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेदों को शलाका रूप से स्थापित करके, यानी वहां भी चार शलाका की, जैसे हम नीचे के अर्धच्छेद चार बार किए 256 डिवाइडेड बाय 13 को, जीव राशि के जितने अर्धच्छेद है ना, कितने हैं जीव राशि के अर्धच्छेद? चार है, तो इसको भी चार बार हमने आधा आधा किया। अब उसके ऊपर की संख्या 256 है, उसको भी चार बार आधा आधा करो, कितने होगा? 16 होगा, तो इसको 16 और नीचे 16 बाय 13, कहीं से जाकर वो 13 पर आता है, हैं? देखो इसलिए संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेदों को शलाका रूप से स्थापित करके, यानी इतनी बार अर्धच्छेद अर्धच्छेद करना है, अर्ध अर्ध करना है। जीव राशि के अर्धच्छेद चार है तो ऊपर हमारा 256 था और नीचे की संख्या 256 डिवाइडेड बाय 13 थी, तो ऊपर के भी चार बार अर्धच्छेद करो और नीचे भी चार बार आधा आधा करो, तो ऊपर चार बार आधा आधा करके 16 रह जाते हैं और नीचे चार बार आधा आधा करते तो 16 बाय 13 रह जाते। तो क्या कहते हैं? अनंतर ये मिला ना आपको ऊपर के पैराग्राफ में, नीचे से तीसरी लाइन अनंतर लास्ट में, अभी दूसरे लाइन पे मिथ्या दृष्टि जीव राशि के द्वारा उद्वर्तित यानी भाजित संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण से ऊपर उत्पन्न की हुई संपूर्ण जीव राशि में भाग देने पर यानी 256 का 4 बार अर्धच्छेद करने पर 16 आता है। उस 16 को ध्रुव भागहार जो 256/13 था उसको भी 4 बार हमने अर्धच्छेद किए तो वो भी 16 आ गई, यानी 16/16/13 ऐसे आ गए। भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। अब उदाहरण में यही समझाया है, जीव राशि 16 के अर्धच्छेद 4 के बराबर, यानी अभी 4 बार अर्धच्छेद करना है, 4 बार आधा आधा करना है, तो 4 के बराबर जीव राशि के वर्ग 256 के अर्धच्छेद करने पर 16 लब्ध आते हैं, यानी हमने उसके पूरे अर्धच्छेद नहीं निकाले, 16 तक उसको आधा आधा किया। जितने जीव राशि के अर्धच्छेद है ना 4, तो 4 बार उसको आधा आधा किया तो 16 आ गए। अनंतर मिथ्या दृष्टि के प्रमाण से भाजित जीव राशि के प्रमाण 16/13 का जीव राशि के प्रमाण 16 में भाग देने पर 13 मिथ्या दृष्टि प्रमाण लब्ध आता है। अथवा अभी दूसरी पद्धति से समझाते हैं, ध्रुव राशि के अर्धच्छेद यदि संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के अर्धच्छेदों के समान होते हैं, पहले हमने 16 के कंपैरिजन में किया, 16 का अर्धच्छेद है 4, यदि हम ध्रुव राशि का 4 बार अर्धच्छेद करते हैं तो क्या आता है, उन्होंने बता दिया 16/13 संख्या आती थी। अब यहाँ कहते हैं 256/13 के अर्धच्छेद कितने करने हैं, जितने 256 के अर्धच्छेद है उतने, तो 256 के अर्धच्छेद कितने होते हैं, 8 है, तो 8 बार 256/13 को आधा आधा करो तो क्या बचेगा, 1/13 बचेंगे। देखो क्या कहते हैं, ध्रुव राशि के अर्धच्छेद यदि संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग के यानी 256 के अर्धच्छेदों के समान होते हैं तो, यानी उसके भी 8 अगर हम कहेंगे तो, उत्तरोत्तर अर्धार्ध रूप से छिन्न करने के अनंतर, उत्तरोत्तर अर्धार्ध रूप यानी 2-2 से भाग देते जाओ उसको, आधा करो आधा करो आधा करो आधा करो, तो उसके बाद अवशिष्ट रही राशि का प्रमाण कितनी बचेगी, हमने अभी देखा ना 1/13 बचेगी, 8 बार आधा 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 करते हैं तो 1/13 रह जाते हैं, तो उसका प्रमाण कितना रहा, मिथ्या दृष्टि जीव राशि से एक रूप को खंडित करके जो एक भाग आता है उतना होता है। मिथ्या दृष्टि राशि यानी 13, एक रूप यानी एक रूप को खंडित करना यानी एक को भाग देना, यानी 1/13 1/13 जो एक भाग आता है उतना होता है। अनंतर अभी उसके बाद ध्रुव राशि के अर्धच्छेदों को शलाका रूप से स्थापित करके, यानी ध्रुव राशि के अर्धच्छेद हुए कितने हुए, अभी 8 हुए और 1/13 बच गए, 8 अर्धच्छेद हुए ना, संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग को अर्धार्ध रूप से छिन्न करने पर 1 आता है, 256 के 8 बार अर्धच्छेद करेंगे तो 1 आता है, 256/13 के 8 बार अर्धच्छेद करते हैं तो 1/13 बचता है, तो अभी 1/1/13 करेंगे। अनंतर वही बता रहे, अनंतर उस एक को 1/ क्या करना है, मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण से भक्त एक, ये पूरा एक वन अपॉन भक्त यानी भाजित, मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण से भक्त यानी भाजित एक यानी 1/13 उसके द्वारा भाजित करने पर 1/1/13 मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। अभी हर एक पैराग्राफ का अंतिम सेंटेंस मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। अभी उदाहरण देते हैं, अभी कुछ समझ में आ रहा है ना, हाँ, 16 के ऊपरी वर्ग 256 के अर्धच्छेद, हाँ अर्धच्छेद है ना, आधा आधा करना, तो 256 के अर्धच्छेद 8 है, तो 8 के बराबर यानी 8 बार ध्रुव राशि जो 256/13 है 19.913 के अर्धच्छेद करने पर 8वां अर्धच्छेद 1/13 होता है। अभी हमने देखा था ना कैसा होता है, उसको एक में मिथ्या दृष्टि के प्रमाण 13 के भाग देने पर जो लब्ध आता है उतने के बराबर है 1/13। पुनः इन 8 अर्धच्छेदों को शलाका करके नहीं, इतनी बार हमको अभी आगे वाला 256 है उसको भी इतनी बार आधा करना है। 256 को एक बार आधा करते हैं तो 128 आए, दो बार आधा करते तो 64 आए, तीन बार आधा करते तो 32 आए, चार बार करेंगे तो 16, पांच बार करेंगे तो 8, छह बार करेंगे तो 4, सात बार करेंगे तो 2, आठ बार करेंगे तो 1, बराबर। हाँ, तो इतनी बार अर्धच्छेद करने पर 1 आता है, 8 बार किया ना हमने। पुनः इस 1 में 1/13 का भाग देने पर 13 लब्ध आते हैं, यही मिथ्या दृष्टि राशि है। अथवा और एक अलग पद्धति से बता रहे, ध्रुव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग को गुणित करके, अभी गुणा किया 256/13 × 256 गुणित करके जो लब्ध आवे उसका उसके ऊपरी वर्ग में, देखो अभी हम 16 की भाषा में देखेंगे, अपनी ध्रुव राशि क्या है 16^13 256/13 है ना, उसको गुणित किससे किया 256 से यानी 16 के वर्ग से। ध्रुव राशि को जीव राशि के वर्ग से गुणित करके जो लब्ध है, ये लब्ध है हमारा, उससे क्या करना उसके ऊपरी वर्ग में भाग देना। 256 का ऊपरी वर्ग कौन है, 50, बराबर। 50 = 16 कितना है, 4। तो अभी कितनी संख्या आएगी फाइनल, 13। तो क्या कहते हैं इसको, हम अभी इसको पढ़ेंगे। देखो ध्रुव राशि के द्वारा यानी 256/13 संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग को गुणित करके, यानी 256 को गुणित करके जो लब्ध आवे कितना लब्ध आएगा, 50/13 इतना लब्ध आएगा है ना, उसको उसके ऊपरी वर्ग में यानी जीव राशि के ऊपरी वर्ग का ऊपरी वर्ग यानी 50 में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है, क्योंकि संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग का उसके ऊपरी वर्ग में भाग देने पर संपूर्ण जीव राशि का ऊपरी वर्ग आता है, यानी 50 को 256 से भाग देने पर 256 आते हैं, और फिर वही रह गया 256/256/13। पुनः ध्रुव राशि का संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। उदाहरण देके उन्होंने समझा यही इसी बात को, सर्व जीव राशि का ऊपरी वर्ग 256 और सर्व जीव राशि के ऊपरी वर्ग 256 का ऊपरी वर्ग वो 65,536 चाहिए, 16 है वहाँ, तीन जगह उसको करेक्शन करना है। ऊपरी वर्ग लिखा है ना उसके आगे 536 और नीचे की लाइन में भी दो जगह करना, दो बार उन्होंने वो तीन बार टोटल में, हाँ एक बार सही लिखा है, मिला आपको कहाँ करना है, हाँ। देखो नीचे उन्होंने समझा है, 256/13 गुणा 256 ये ऊपरी उम्र गया ना जीव राशि का, इज इक्वल टू 65,536/13 यहाँ तो बराबर है। अभी ये जो संख्या आ गई तो उससे 50 को डिवाइड करना है, तो 65,536 यहाँ भी करेक्शन किया ना, डिवाइडेड बाय 65,536/13 तो फाइनल आंसर 13 आ जाता है। अभी यहाँ भी वैसे समझाते हैं कि वहाँ उक्त भागहार के नहीं, यहाँ ऊपर 50 है और नीचे भी 65/13 है, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ भागहार के जितने अर्धच्छेद हो गए उतने अर्धच्छेदों को ऊपर करना, तो अर्धच्छेदों को अर्धच्छेद से भाग देना तो वही आ जाएगा। तो पनट्टी के अर्धच्छेद कितने आते हैं? बोलो 16। हाँ यहाँ लिखते हैं ना, देखो 56 पेज पर उक्त पहली लाइन, उक्त भागहार के, उक्त भागहार ने अभी हमने जो फाइनल रिजल्ट निकाला था पनट्टी डिवाइडेड बाय 13, ये हमारा भागहार है। उक्त भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण, उसके जितने अर्धच्छेद है उतनी बार उक्त राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है, वो अर्धच्छेद को अर्धच्छेद से डिवाइड करेंगे। शंका, इस भागहार की अर्धच्छेद शलाकाएं कितनी है? वो अर्धच्छेद शलाका कैसे निकाली, उसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो उसको निकालने का तरीका बताते हैं। हमें तो मालूम है ना 256 का ऊपरी वर्ग, 256 के 8 है तो उसका ऊपरी वर्ग के 16 हो जाते हैं, या जीव राशि 16 है, 16 के अर्धच्छेद 4, 256 के 8 और पनट्टी के 16, तो दो स्थान ऊपर गए ना जीव राशि से, दो स्थान ऊपर गए। जीव राशि का अर्धच्छेद है 4 और अभी जो पनट्टी हमें दो स्थान पहले आगे गए थे, तो मान लेते हैं हम 10 स्थान जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण जीव राशि के ऊपर दो वर्ग स्थान जाकर वह भागहार उत्पन्न हुआ है, ये जो पनट्टी डिवाइडेड बाय 13 वाला जो है ना, वो कहाँ, उसकी वो पनट्टी वाला जो पनट्टी का संख्या जो है वो दो वर्ग स्थान ऊपर है, जीव राशि 16, उसका एक वर्ग स्थान ऊपर जाएंगे तो 256 आते हैं, दो वर्ग स्थान ऊपर जाते हैं तो पनट्टी आती है, बराबर, तो दो वर्ग स्थान ऊपर है, इसलिए क्या करना, दो वर्ग स्थान आगे है ना, इसलिए दो का विरलन करना, एक एक बार लिख दो, दो दो वर्ग स्थान आगे जाना है इसलिए, तो दो का विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक को दो रूप करके हर एक के ऊपर लिखो दो दो, परस्पर गुणा करना तो कितने आ गए, 4। जो संख्या उत्पन्न हो उसमें से एक कम करना, 4 - 1 = 3 हो गए। क्या किया उन्होंने, जितने वर्ग स्थान आगे जाना है उतनी बार दो दो संख्या लिखकर आपस में गुणा किया, उसमें से एक घटाया, कम करके तीसरी लाइन, अवशिष्ट राशि के द्वारा जो बची हुई राशि, यानी अभी हम हमारी राशि 3 आती है, 3 के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेदों को गुणित करके, संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद कितने हैं, 4, 3 से 4 को गुणित करना, 12 आ गए। जो प्रमाण आवे उसे अंतिम भागहार से अधिक करने पर अर्धच्छेद शलाकाएं होती है, ये उसमें 4 में इसको मिला देना, ओरिजिनल अपने 4 थे, 4 में और ये मिला देना 12, तो 16 आ गए है। तो कौन से स्थान पर है वर्ग, आगे कितने वर्ग स्थान चले गए, हाँ 2 है, समझो 4 जाते तो 4 बार दो दो लिखना, आपस में गुणा करना, -1 करना, जो संख्या आएगी उससे 4 को मल्टीप्लाई करना, और जो समझा वहाँ रिजल्ट आएगा वो 4 में मिला देना, ये उसके नए अर्धच्छेद निकलेंगे जिस स्थान पर है उसके। उसका उदाहरण यहाँ समझा है, देखो पहले विरलन किया, 2 एक एक लिखा, उसके माथे पर 2 2 लिखा, 2 गुना 2 4 हुए, 4 में से 1 कम कर दिया तो 3 आई राशि, उस 3 को 4 से गुणा कर दिया तो 12 आ गए, तो 12 तो पूर्ण, हम भागहार का समझा रहे थे इसलिए 12 को पूर्ण में लिया, और 3/13 अधिक उक्त भागहार के कुल अर्धच्छेद होते हैं। इसी प्रकार भागहार के त्रिकच्छेदों को, अभी अर्धच्छेदों से पेट नहीं भरा तो क्या कहते हैं, त्रिकच्छेद करना, यानी आधा आधा नहीं करना, वंथड़ वंथड़ करना। इसी भागहार के त्रिकच्छेदों को शलाका करके, यानी जितने उतने जितनी बार उसके 3-3-3 से भाग देख सकते हैं, उसको हम त्रिकच्छेद करेंगे। यहाँ अर्धच्छेद कहाँ था, अर्धच्छेद में हमने 256 को कितनी बार, 8 बार देखा था, अब त्रिकट छेद करेंगे तो उसके कितने बार होगा उसको बताएंगे। देखो इसी प्रकार भागहार के त्रिकट छेदों को शलाका करके, यानी उसमें जितनी बार तीन तीन का भाग जाता है उसको हम शलाका करेंगे। शलाका यानी उतनी बार करना है ना, ऊपर भी तीन तीन का राशि में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है, यानी ऊपर की राशि के भी उतने ही त्रिकट छेद करते जाना तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। इसी प्रकार चतुर्थ आदि छेद शलाकाओं के द्वारा भी, छेद शलाका यानी चतुर्थ छेद, यानी जैसे त्रिकट छेद चतुर्थ छेद दस छेद भी करेंगे, हम कहते हैं ना अपनी जो दशांश पद्धति है उसका दस गुना दस गुना दस गुना करें, उसका दसवा भाग हमारी जो सिस्टम है अभी दस में ही होती है ना। तो चतुर्थ आदि छेद शलाकाओं द्वारा भी राशि के छिन्न करने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि है आती है, ऐसा कथन करना चाहिए। उसका उदाहरण देखते हैं फिर बाकी बात हम कल देखेंगे। क्या कहते हैं उदाहरण 256 डिवाइडेड बाय 13 के अभी एक बार उसको एक बार वंतर करो। देखो 256 डिवाइडेड बाय 13 है ना, उसको एक बार वन थर्ड किया इतने आ गए, तो कितने आएंगे? तो ये 6.22 चले इतने आ गए। हाँ और फिर उसके और उसका तीन भाग करो, तो उसका और तीन भाग करो। तो देखो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा किया, उन्नीस पूर्णांक कितने थे, 9 डिवाइडेड बाय 13 थे ना, 318 इसके 6 रहेगी ना, यहाँ देखो 318 6 हुए, एक पूर्णांक 9 13 अंश बच गए, 13 का 13 9 22 13 अंश रह गए, 22 13 अंश और हमने उसका तीन भाग किया था तो 6 22 39 अंश बचे। ये कैसे निकाला फिर से, 19 पूर्णांक 9 13 अंश है, उसको हमको 3 से डिवाइड किया, वन थर्ड करना है, तो यहाँ भी इसका वन थर्ड करो तो 6 तो पूर्णांक आ गए और कितने बचे हैं, 1 पूर्णांक 9 13 अंश बचे, यानी 22 13 अंश बचे, उसको भी 3 का भाग देना है ना, और पूर्णांक को भी 3 का भाग देना है, ये समझ में आ रहा है? तो कितना हुआ, 22/39 आ जाएगा, तो 6.22/39। अब इसके आगे की स्टेप क्या है, इसको और एक तीन से भाग दे दो, तो इसको तीन से भाग देते हैं तो दो तो पूरे आ गए, अब इसको भी तीन से भाग दे दो तो 39 × 3 117 आ जाएंगे, 6 का वंतर 2 और 22/39 का वंतर है 39 का और 3 गुना करो 117 आ गए। हाँ 22/117 इसमें 2 त्रिकट छेद रहे और इतना बाकी रह गया, अतः इतनी बार 256 में 3 का भाग देना, 256 को 2 बार 3 का भाग देना है, ऊपर 256 लिखो और इसको 2 बार 3 का भाग देना, और ऊपर जो बची संख्या है ना 22/22 वो तो रहेगी, 2 बार 3 का भाग देंगे तो एक बार दिया तो, और यहाँ हमारी कौन सी संख्या रही थी, 217/256 ऐसी आई थी, ऐसी आती है फाइनल फिगर, वो कल देखेंगे इसको, जरा इसको इसका क्रॉस हो जाएगा और इसको 2 बार हम 3 से भाग देंगे, एक बार देंगे तो 39 आता है, दूसरी बार 13 आ जाएगा, इसको फिर कल देखेंगे, आज बहुत ज़्यादा हेवी डोज हुआ ना, लास्ट में सैचुरेट इतना होता है वो घुसता नहीं अंदर। आज सब घना घन होने वाला है। ये जैसे अर्धच्छेद का देखा वैसे ही त्रिकट छेद का है, वो जो उनके जो वहाँ जो किए हैं ना गणित वगैरह उसको जरा समझेंगे कल। चलो अभी यहाँ रुकते हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा।